कब प्रथम अवस्था में, साधन करते करते आसक्ति के बाद में भाव अवस्था होने पर प्रथम अवस्था में वही प्रेम भाव कहलाता है क्या? तो है तो प्रेम ही किंतु भाव का, जैसे आम है पहली स्थिति में क्या कहलाता है? कच्चा। और जब बीज का होगा दशा, इधर भी होता है बंगाल में दशा कहते हैं, पीला हो जाएगा, रहेगा कड़ा किंतु पीला हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा गंध, थोड़ा सा गंध, थोड़ा नरम नहीं होगा, उसमें रस नहीं होगा, न मीठा रहेगा न खट्टा रहेगा, वो बहुत ही लोग खाते हैं उसको, खट मीठा, खट्टा और मीठा दोनों। और इसके बाद जब पक जाएगा ऊपर नीचे सब समय वो सब जगह एकदम रस युक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रेम की पहली स्थिति का नाम भावावस्था, यही बिंदु मंगल में देखा जाता है। महाप्रभु के परिकरों में इसका वर्णन नहीं किया है इसलिए कि वो लोग सिद्ध भक्त हैं। रूप गोस्वामी को भावावस्था कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको वर्णन करके भरत जी का और बिंदु मंगल और भागवत में वर्णन किया गया है। वो जो
मैं
जो उनका ये वर्णन आता है जो इन लोगों को भावावस्था कुछ होगा, भक्त ऋषि को भी भावावस्था से ही नीचे भी कर। तो प्रथम अवस्था में उसको भाव कहते हैं सात्विक, उस समय में सात्विक भाव जो होते हैं, सात्विक भाव मैंने वही जो पहले बताया है कृष्ण विभावी वो होना चाहिए, उस सत्व से प्रकटित होकर के और शरीर पर जो दिखाई पड़ते हैं किंतु इसका मूल उद्गम है वहां शुद्ध सत्व में। शुद्ध सत्व की स्थिति में कृष्ण को देखा और देख करके कृष्ण अप्रकट हो गए तो ये रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी, तो इसका मतलब है जो उस समय में कुछ देख करके कुछ अंतर ध्यान हो गए इसलिए शरीर में स्तंभ हो गया, रोमांच हो गया, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, आठ ये भाव स्वल्प मात्रा थोड़े अंश में ये होते हैं, थोड़े थोड़े जब थोड़े थोड़े स्थिति में होते हैं अल्प अल्प परिमाण तो उसको कहते हैं, और यही जब पूर्ण अवस्था में जब देखे जाएंगे तो समझो कि यही उसका लक्षण क्या है,
जिसका भाव उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण क्या है।
और भाव में भी नहीं होगा जब तक ये स्थायी भाव न, भाव पहली स्थिति में जो होगा वो एक साधारण भाव के रूप में होगा, चित्त द्रवित होने लगा, किंतु जब वो स्थायी भाव में जब पहुंचेगा अब उसका भाव कभी भी बदलेगा नहीं, और उस पर और सब भाव संचारी व्यभिचारी विभाव अनुभाव सब एक जगह मिलेंगे, तो उस समय में तब प्रेम उद्दीप्त रहे, प्रेम अच्छी तरह से प्रकाशित उसके पहले, इसलिए स्थायी भाव हो गया या भाव उत्पन्न हो गया तो उसके लक्षण क्या है? बाहरी, वो भी बाहरी स्थायी भाव का लक्षण, क्षांतिर व्यर्थ का लक्षण, विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंदा समुत्कंठा नामगामी सदा रुचि, आसक्ति सदग्न ख्याने प्रीति तद्वसति स्थले इत्यादयो अनुभावासु जाते भावांकुरे जने अंकुरे जने, जिसके अंदर में ये भाव उत्पन्न हो गया उसके ये सब कहीं कहीं स्वभाव पिछल रहने पर, पिछल मैंने क्या, जैसे बहुत से पुरुषों में भी स्त्रियों में भी देखा जाता है कि बात के बाद में किसी ने कह दिया कुछ, किसी बात का स्मरण करके हाय हाय लड़की मेरी चली गई घर में, वो कैसे होगी। हम लोगों में भी कभी कभी ऐसी पिछलता देखी जाती है, ऐसी पिछलता की वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है, अश्रु इत्यादि हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दस दस हैं कितने,
नौ।
ये सबको बारे ये सब भाव जब उदित हो तो सच जैसे ये सचमुच में ये भाव है, तो स्वभाव वैसा आदत के द्वारा अभ्यास करके भी कोई रो देता है। बहुत से लोग देखते हैं ऐसे कर उठते हैं, चमक जाते हैं, कभी आंख से मुख से आंसू और लाला भी गिरने लगते हैं। ऐसा में हरिदास ठाकुर कहीं जा रहे थे, देखा एक सांप हो गए, वो बजाता है और सांप को खिला रहा है, और कृष्ण की काली दमन की लीला का वर्णन कर हरिदास ठाकुर वहां पर पहुंचे और काली दमन की लीला सुनी और भावाविष्ट हो गए रोमांचित, और वहीं पर उसने उनकी बहुत पूजा की। लोगों ने देखा जैसे ये नर भी इनकी पूजा कर रहा है, सब लोग बड़े प्रभावित। इसके बाद में जब उनको होश आया फिर वहां से चले। एक ब्राह्मण देख रहा था कि जैसे मुसलमान होकर के छोकड़ा होकर के अभी छोटी सी उम्र, और सभी लोग इतना आदर किया, चरणों की धूली सभी लोग लेने लग गए मुसलमान। तो मैं यदि ऐसा भाव दिखला दूं तो साथ ही साथ में बड़े लोग आदर करेंगे और हमको सिद्ध समझ लेंगे। ऐसा समझ करके वो भी कैसे ऐसा कपा कपा करके जिस पर भी पड़ा, तो सबको ये नहीं कहा अच्छा जरा परीक्षा तो करूं, बस अपनी चाबुक उठाई और एक चाबुक मारा, लगते ही यहाँ से सपाट लगा और सब उसके खड़ा, और ये खदेड़ा मारती थी वो भागते जाए खड़े। देखो यही भाव, ऐसा भाव नहीं। 22 बाजारों में उनको हरिदास ठाकुर को मारा, कोई पता ही नहीं है जिसे कौन मार रहा है कि क्या हो रहा है, शरीर में आवेश ही उनका नहीं है, भगवान में आविष्ट हो गया। शांति व्यर्थ काल शून्यता आशा बंद, इसके विषय में हम लोग कल आलोचना करेंगे। आज कीर्तन भी है, सब लोग कीर्तन में
और आ गया यहाँ पर निष्ठ था, इसके बाद में रूप मध्यान्ह में आ गया रुचि, इसके बाद में आसक्ति, अब यहाँ पर संख्याकालीन हो गया भाव, भाव के बाद में फिर आएगा प्रदोष, और प्रदोष के बाद में
नक्त,
यही नक्त ही यहाँ पर समाप्ति, यहाँ पर भाव, भाव में अनर्थ कैसे दूर हो जाते हैं, किंतु उसका कुछ कुछ गंध रह सकता है, जैसे भरत जी के चरित्र में विल्लंग जी के चरित्र में और अर्थान धाम के चरित्र में ऐसा देखा है, महाराज अम्बरीश महाराज के चरित्र में भी अंत में ये देखा है, अम्बरीश में ये देखा जाता है कि वैदिक भक्ति करते 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 कैसे अनर्थों का दूर होता गया और कृष्ण की पूर्ति के लिए सब कुछ करते थे, राज्य पाठ इत्यादि सब मंत्रियों के हाथ में, यज्ञ इत्यादि सब कार्य पुरोहितों के हाथों में, सब प्रकार से निश्चिंत होकर के भगवान मंदिर सेवा पूजा नौगा भक्ति के विषय में आकर के धीरे धीरे भाव अवस्था में भक्ति को दिखलाया जो भक्ति आ गए, किंतु एक सात्विक वस्तु में, सात्विक वस्तु में थोड़ा सा उनका उनकी आसक्ति हो जाने से कुछ दिनों के लिए वो रुक गए, उनका जन्म हुआ किरण के रूप में और ब्रह्म वो जन्म उनका चला गया, फिर इसके बाद बिल्व मंगल जी का अनर्थ उसके दुख काटने और गाली गलौज के बाद पुनः अपनी आंख तक फोड़ ली, जो आंख प्रिय होती है ये भगवत भजन में आता है, जब छोड़ी तो भगवान की ऊपर दया हो गई, गीता उनका पर पार्थिव वो वृंदावन में आए और धीरे धीरे उनका भाव परिपक्व होकर के लगभग प्रेम के रूप में परिवर्तित, फिर दूसरे शरीर में वही शुद्ध प्रेम और फिर आगे बढ़े, ऐसे ही भाव अवस्था आने पर हमने बतलाया नयनम गलदास उठाया भक्ति मनो का भी जी कर प्रेम की प्रथम अवस्था जिसमें कि सात्विक भाव समूह थोड़े थोड़े रूप में उदित हो गए, पशु पंप कुल हाई भाव का लक्षण ये तटस्थ ऊपर से ये दिखता है, भीतर तो समझना मुश्किल है, भीतर से वही समझे में अंतर लक्षण, जो चित्त जो द्रवित होता है रुचि के द्वारा, रुचि कौन, कृष्ण संबंधी जो रुचि है, रुचि इतनी प्रबल हो जाती है कि रुचि के द्वारा चित्त तब इसको कहते हैं ममता भी थोड़ी बहुत आ जाती है, तो उस समय में ये तो है अंतर लक्षण, किंतु अंतर लक्षण देखेगा साधारण लोग देखने योग्य नहीं, देखने में नहीं आए, विशेष विशेष लोग उसको अनुभव कर सकते, इसलिए उसका तटस्थ लक्षण जो है ऊपर से जो भाव है उसको ये बतला रहे हैं। शांति। चित्त चंचल के जितने भी कारण हैं वो आने पर चित्त क्षुब्ध नहीं होगा, कितना भी हो, जितना भी आए चित्त और भगवान की तरफ में दीन नहीं होकर के चलता, अशांत नहीं होगा। तो इसका भाव हम लोगों का चित्त कभी गड़बड़ हो जाए, कभी कभी चंचल हो जाता है, फिर हरी कथा श्रवण से ग्रंथ पाठ करना चाहिए वो ठीक। इसलिए चित्त जब क्षुब्ध न हो तो ये समझो ये अनर्थ दूर हो गए हैं। अनर्थ माने क्या? बहुत प्रकार के अनर्थ पहले बताया, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय प्रोपन्न, क्रमशः होता है। पहले स्वरूप में भ्रम, माने मैं कौन, कृष्ण हूं, भक्ति का स्वरूप कैसा, अनर्थों का स्वरूप, ये विषय में भ्रम हो जाएगा। और भक्ति को भक्ति जब समझेगा और अपने को ब्रह्म समझेगा, कृष्ण को ब्रह्म समझेगा, या कृष्ण को कुछ भी नहीं समझता और भक्ति भक्ति को अभक्ति समझने लग गया, ये सब स्वरूप था। असत कृष्ण, जब देह में आत्माभिमान होगा और चारों स्वरूप ज्ञान नहीं रहेंगे तो संसारिक वस्तुओं को ही ये हमारा प्राप्त है, हमको ये सब चीज। कृष्णा होता है प्यास, प्यास माने विषयों की प्यास, विषयों की भूख। भगवान में रुचि नहीं रहने पर विषयों में रुचि जरूर रहे, जितने परिमाण में भगवान में रुचि चलती जाएगी, परमात्मा में रुचि होगी, उतने ही परिमाण में ये रुचि कम होगी, और जितनी संसारिक विषयों में रुचि होती जाएगी और जितना होगा हृदय दुर्बल होने लगेगा। हृदय दुर्बल होने से ही तो समझ नहीं पाएगा चित्त वृत्ति भ्रष्ट होगा। इसलिए चित्त क्षुब्ध होने का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त क्षुब्ध होना, यदि उस बच्चे को वो गिर गया ना पानी में और भरत जी भजन कर रहे थे, भजन में उनका चित्त होता तो उनको वो दिखलाई नहीं। बच्चा तो एक दिन जाएगा ही, मरेगा ही, या कहीं ना कहीं जाएगा ही, उस समय इनका यह ज्ञान विलुप्त हो गया। उसके दुख को देख करके द्रवित हो जाने से भगवान के प्रति चित्त जो उनका था, जो भजन कर रहे थे नाम नामी अभिन्न, या उनकी लीला कथा का जो चिंतन कर रहे थे वो अभिन्न न समझ करके संसार में चले, यही दुर्बलता है, इसी का नाम है दुर्बलता। चित्त क्या
दुर्बल,
और इसी के बाद में उनका अपराध नहीं हुआ, किंतु किसी किसी का अपराध भी हो जाता है, अपराध न वैष्णव का कम यदि अपराध हो गया तब तक ना जाने कितने उनके जन्म चले जाए अपराध न। तो चित्त के उनका वो शांति नहीं रही, चित्त चंचल हो गया, और क्या करें, उन्होंने विचार किया किंतु चित्त दुर्बल होने के कारण उसको उठा लेते भी कोई बात नहीं थी, छोड़ देते, थोड़ा सा बड़ा हो गया छोड़ अपना भजन परिपाटी में लगे, किंतु छोड़ा नहीं, वो आसक्ति क्रमशः बढ़ती हुई, और कोई था नहीं नारद इत्यादि आकर के बीच में उनको, भगवान थे किंतु नहीं हो, वैसा मानेगा नहीं इसलिए छोड़, भगवान है चित्त में क्यों नहीं रोक दिया। स्वकर्म फल वो पीछे सीखेगा कैसे, ठोकर लगेगा, इसलिए भगवान ने नहीं सोचा, वहां उनके हृदय में तो थे नहीं शिक्षा, जैसे अच्छा तो तू कर ले,
पहले कहा जो मत करो
उभय गुण में से किसी जाओ
देखो सीखो।
धीरे धीरे आसक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वो छोड़ न सके, अंत में उसी के लिए प्राण दे करके और भस्मीभूत बन करके चिंता करें। इसलिए सात्विक चिंतन में इतना है अशांति, तो राजसिक और तामसिक यदि हो तो तमाम क्या स्थिति। बिल मंगल जी संभल गए। कैसे संभल गए? देखा जाए अच्छा ये बाधा दे रही है आंखें घुसे। प्रभु ने कहा जा ये ठीक, और फिर उसको चित्त में बार में सर्वत्र उसको दर्शन दे दिया। अव्यर्थ कालोत्तम सब समय अव्यर्थ कालोत्तम सब समय चित्त को लगाए रखना भगवत भक्ति में। जैसे प्रसाद सेवा के समय में नीम करेला से लेकर लाखड़ा पहले अन्न के साथ में या रोटी के साथ नीम करेला दे दिया, इसके बाद में लाखड़ा दे दिया, इसके बाद में दाल दे दिया, इसके बाद में रसा दे दिया, इसके बाद में डालना आया इसका खेने का आलू के साथ में बहुत सुंदर बना हुआ है उसके साथ में, फिर इसके बाद में चटनी दे दी, इसके बाद में दही दे दिया, दूरा दे दिया, इसके बाद में परमान्न दिया, इसके बाद में सुंदर रसगुल दे दिया, पापड़ दिया, इसलिए कि वो बीच बीच में लेकर के वो परमान्न या रसगुल दे खाए, इसलिए पापड़ दे दिया। विभिन्न प्रकार के रुचि को परिवर्तन करने के निर्विशेष ज्ञान में कोई चीज एक ही चीज है, उसमें दो चीज है, किंतु भक्ति में तरह तरह की चीजें, तरह तरह की। सवेरे अर्चन करो, आरती करो, आरती में कीर्तन करो, थोड़ी देर के बाद में उनका माला कला उतार करके सब ठीक रखो, तुलसी चयन करो, फूल चयन करो, थोड़ा सा घूमना हो जाएगा, यहाँ पर प्रकृति सुंदर है वहीं तो तुलसी मिलेगा, पुष्प मिलेगा, थोड़ा सा घूमना घामना भी हो गया, और एक हाथ में दलिया वो क्या कहते हैं साजी, एक हाथ में डोलची जैसी, और एक हाथ से तू हरे कृष्ण 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 कर, कोई वैष्णव आ गया तो दो चार बातें तू से कर ली, भाई भजन आज दुआ नहीं, वो कहता है जी आपका भजन नहीं आज मेरा ही भजन है, वैसे ऐसे रंग तो हम थोड़ा सा कर दिया, फिर यहाँ आया, फिर स्नान किया, स्नान करने के बाद में अर्चन इत्यादि किया, इसके बाद रसोई बनाया, देखो रसोई बनाना था रसोई बनाया, इसके बाद में आकर के अर्चन किया, जो भोग राग दिया, इसके बाद में थोड़ा सा दोपहर में ग्रंथ लेकर के चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवत इत्यादि लेकर के बैठ गए। इसी तरह से फिर शाम को ठाकुर जी को जगाया, कुछ पाठ कीर्तन सुना, फिर रात में हरी कथा कुछ हुई, कुछ अपना हरिनाम की माला लेकर के बैठ गए, करते करते बैठे प्रसाद जब तक नहीं आता सुना, सवेरे में उठ करके ये चिंता कल हरिनाम पूरा नहीं हमारा हुआ, ऐसा उठेंगे सवेरे ये पूरा नाम करें, कल जो हमने कुछ हमारे हृदय में दुर्बलता थी उसको याद करके भाई ये सब दुर्बलता है, भजन हो नहीं रहा, कैसे करें, हृदय द्रवित होकर के प्रभु को पुकार करें, दर्शन को पुकार, इस तरह से नाना प्रकार की ये मन उचित एक से तो एक में लगा, एक में हरिनाम करने में थोड़ा से ही हो गया, हरिनाम की महिमा जिस शास्त्र में उसमें पढ़ने में, महाप्रभु का चरित्र कुछ पढ़ने लगे रघुनाथ दास का चरित्र कैसा, रूप गोस्वामी का चरित्र कैसा, कैसे उन्होंने भजन किया, महाप्रभु जी की कैसी। फिर उसे भी थोड़ा सा ये मन हो गया श्रीमद् भागवत में कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें चित्त लगा दिया, फिर थोड़ा सा हरिनाम किया, फिर थोड़ी सी कोई सेवा कार्य करने मंदिर के सामने में कुछ पड़ा उसको खरीदा। इस तरह से सारा दिन रात 24 घंटा में उसमें मन लगाया जा सकता है। इसको कहते हैं अव्यर्थ कामना। व्यर्थ कामना तो उसमें क्या है, हरिनाम की ध्वनि लेकर के दूसरी चिंता करता, कोई भगवान का जो कोई सेवा हुई उसमें दूसरी चिंता नहीं, ये व्यर्थ काल की। इसलिए व्यर्थ न गाओ, जिनका ऐसा हो गया जो उनका 24 घंटा अव्यर्थ होता है, किसी न किसी तरह में उनसे चित्त लगा रखा है भगवान, मन और कुछ सोच नहीं सकता, मन सोचता है अनर्थ होता है। इसलिए मन को कोई सोचने समझने का मौका न देकर के भगवान की कथाओं में निरंतर लगाए रखा, अपने को भी लगाए दूसरों को, तब ये समझो जो ऐसा जिसका हो रहा है। भागवत में पहले ही कहा गया भगवान की कथाओं को सुनने से मैं जिसकी रुचि नहीं है उसका सब व्यर्थ होता है। यदि भगवान की कथाओं को सुनने में कीर्तन करने में भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में भक्ति में यदि लग जाए तो उसका चित्त जरूर प्रसन्न होगा, चित्त में खेद नहीं होगा। अच्छा, चित्त में खेद होता है इसका दाई कौन है, कौन है, कौन है भाई, विचार करो ठीक से। चित्त मेरा खेद खेद भगवान दाई है कि गुरु दाई है, ना वैष्णव दाई है, ना वो व्यक्ति है, ना कि कौन है। इसी को बहुत तरह से शास्त्रों में समझा, उसके लिए कोई दूसरा दाई नहीं है। अनर्थ हम में है तो इसके लिए कौन दाई है, अनर्थ दूर हो गया वैष्णव की कृपा से हम अनर्थ को दूर कर सकते। इसलिए भगवान की कृपा सब समय अनुभूत होनी चाहिए और चित्त को सब समय भगवान की भक्ति में लगाए। इसलिए 64 प्रकार की भक्ति है, अरे और कुछ नहीं है तो गैया तो है, गैया के चरण में पानी डाल करके उसको समय पर दूधो, उसका दूध ठाकुर जी को दो, गैया को भगवान की एक समझो। यदि तुलसी का वृक्ष नहीं है तो पीपल सबको छाया दान देता है, तो नहीं तो ऐसा पानी डाल दो। यदि किसी काम में नहीं मन लगता, हरिनाम में भी मन नहीं लगता, भगवान की कथा में भी मन नहीं लगता, तो तुलसी को थोड़ा सा पानी देकर तुलसी की परिक्रमा करो, मंदिर की परिक्रमा करो और उस समय और कुछ नहीं करेंगे, महामंत्र जप करो। नहीं यहाँ मन लगता चाचे तो गोवर्धन में जाकर, नहीं यहाँ पर ना अच्छा तो यमुना जी को जाकर के स्तुति करके प्रणाम करके थोड़ा सा स्नान करो। मैंने किसी प्रकार से मन को बैठने लगता, कोई दूसरी कृष्ण की चिंता के अतिरिक्त दूसरी चिंता, यहां तक कि शरीर में यदि कोई क्लेश है तो भी इतना हरिनाम इत्यादि करो जैसे हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने पूछा आज आपने प्रसाद का उल्लंघन क्यों, महाप्रसाद आज आपने पाया नहीं, हमसे जाकर के वो बोले गोविंद तो आज हरिनाम पूरा नहीं हुआ यही रोग है, उसने हरिनाम करने की चेष्टा की किंतु हाथ नहीं उठता, अंग नहीं उठ रहे हैं, तो भी चेष्टा करें प्रभु आप कृपा करिए नाम पूजा करें। हम लोग का तो इतना नहीं होगा किंतु जहां तक हो चेष्टा करना, 24 घंटा मन को जैन के उपाय न कृष्ण मनोनिवेश, इसलिए ये सब पूछ हो जाए। और ऐसा नहीं करते दिन रात उसी की चिंता करेंगे तो अनर्थ बढ़ जाएंगे, इसलिए अनर्थ से दूर रहने की चेष्टा करो। अव्यर्थ काल लेना चाहिए, हरिनाम करने के समय, हरि कथा सुनने के समय, भागवत पठन पाठन के समय में, साधु जी का हाथी दर्शन, कभी भी किसी समय मन को किसी दूसरे विषय में जाने मत दो, इसका नाम है। हम लोग चेष्टा करके करेंगे और भाव भक्त क्या करेगा,
उसको चेष्टा नहीं करने, स्वाभाविक रूप से उसको। ऐसे भाव भक्तों के संग में रहने से उसको बहुत सा सहयोग मिलेगा, अनुकूल होगा उनका अव्यक्त काल। विरक्तिर्मान शून्यता, बहुत से लोग मिलने पर अधिकांश अपने सुख दुख की बातें करते हैं, वो सब सुख दुख की बातें अत्यंत कनिष्ठ अधिकारी है वो कर सकता है। हम लोगों को उसमें अधिक पीड़ा होना है शरीर में होगा नहीं, दिन रात उसी की चिंता में मरेंगे। कोई अपमान कर दिया तो अपमान कर देता है तो उसका धर्म वो करेगा, उसका फल वो करेगा। कोई हमारा अपमान करता है, हमारी निंदा करता है तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा ना उसको, किसको भोगना पड़ेगा? निंदा जो करता है वो ना उसको भोगना पड़ेगा, हमको तो भोग। किंतु यदि हमने सोचा कि वो हमारा अपमान कर रहा है तो हम भी भोग रहे हैं, अपने भोग रहे हैं, वो तो जो भोगेगा भोगेगा हम भी भोग लेंगे। इसलिए इन लोगों को अनित्य जान करके इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, कोई अपमान ही किया न किया, हमको समय नहीं है, फुर्सत नहीं है उन सब चिंता करने की। ऐसा भाव रख करके निरंतर चित्त को उधर में रखना, हम लोग का कभी कभी हो जाता है क्योंकि अभी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु हम लोगों को तैयार रहना चाहिए जो भाव उत्पन्न होगा इन सबको लगाना। इसलिए जहां तक हो सो धीरे धीरे इन सब की विरोधी भावनाओं को दूर करना, साधक में ये स्वाभाविक रूप से। विरक्ति, विरक्ति मैंने क्या है, भगवत भगवान को छोड़ करके, भगवत संबंधी वस्तुओं को छोड़ करके जितने भी विषय हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं उनके प्रति और रुचि, सब समय भगवत में चिन्ह चित्त होने से उसको इधर में कोई रुचि ही नहीं होती। इसलिए इसको कहा गया विरक्ति। जब भगवान में विशेष रूप से अनुरक्ति होगी चिंतन में दिन रात उसी मधुर लीला कथाओं की और सब चीजों की, तो बस अपने आप भाव माने क्या बताया ना, जब रुचि के द्वारा कृष्ण संबंधी रुचि के द्वारा चित्त जब द्रवित होगा तो द्रवित कब होगा, जबकि एकदम वो सब चीजें आएंगे, उसको अब समय कहाँ है। इसलिए जब इसमें रुचि लग गई अब वो विरक्ति संसार से हो जाए विषय। इसका मतलब ये नहीं है सब विषयों से घृणा करेगा, घृणा नहीं, स्वाभाविक रूप में अनुकूल वस्तुओं के प्रति रुचि करता है और जो प्रतिकूल चीजें हैं उनके प्रति अपने, इसका नाम है विरक्ति। व्यक्ति भाव भी हो सकता है, मन की क्रिया भी हो सकती है, आंगिक क्रिया भी हो सकती है इंद्रियों के द्वारा। इसलिए इन सबसे वो जो महापुरुष होते हैं भाव वाले इनको उधर में फुर्सत नहीं होता, इसलिए उनके प्रति विरक्ति हो जाती है। मान शून्यता, मान शून्यता, मान साधारण रूप में भजन का विरोधी है। जितने ही जो मान की लालसा करता है सभी लोग हमें आदर करें, निश्चित रूप से उनका उनसे विरोध होता जाएगा। विरोध होने से हम भी जितना बढ़ेंगे ना विरोधी भी उतना बढ़ेगा। यदि नदी में कोई एक बांध बांध दिया है साधारण तो पानी ऊपर तक पहुंचेगा, और बढ़ाओ और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और जितना तक करते 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 यहाँ तक ऐसा होगा जो नदी के जहाँ लेवल है उसके बराबर बांध कर उसे ऊंचा कर दिया तो आसपास से इधर से निकल जाएगा। यदि और भी उसको बांधो तो कहाँ कहीं ना कहीं जहां से बांधता वहीं से निकलेगा वो पानी, वो ठहरे वो तो आएगा ही। ऐसे ही मान सम्मान अपने अंदर में नहीं होता है उनको स्वाभाविक रूप से। सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं उनका कोई कंकर फेंक रहा है कि ठेला मार रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, उनको उनके कानों में जाता है, उनके कान में ही नहीं प्रवेश करता। और भगवान भी तो उनका रक्षा, मान रखे कोई उन पर कोई अस्त्र शस्त्र छोड़े तो उनको थोड़े लगे, वैसा कहीं होता नहीं।
सब प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है हम लोगों को। तो ऐसे ही समस्त विषयों के प्रति जो भगवत संबंध ले उसके प्रति अपने आप विरक्ति हो जाती है और मान शून्यता मान भी हो जाती है। क्या कोई मान दे रहा है कि नहीं, अपने अंदर में मान लेने की इच्छा नहीं है, ये यदि दूर हो जाए तो प्राय सभी कुछ हो गया। अंततः सब कुछ संसार इत्यादि छोड़ने पर भी सब कुछ पति ग्रह इत्यादि ले उससे नहीं ले रहे हैं और नंगे भी डोल रहे हैं तो भी नंगा होने का मान लगता है। लोग कहें इसको तो एकदम कपड़े की जरूरत है, ये एकदम नंगा। बहुत से लोग नंगा बाबा जी नागा बाबा जी हैं, हम लोग ऐसे श्री वन में बेल वन में तो देखा ऐसे ही घूम रहा। और गायों के लिए, अरे भाई आप लोग गायों की रक्षा के लिए ये कीजिए वो कीजिए, जो नहीं देता है उसको गाली दे देता है, मारने भी दौड़ता है। तो ये सब मानुष्यता उसी का होगा स्वाभाविक रूप में जिनके जिनमें भगवान के प्रति हम लोग को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। मान शून्यता भगवत भजन में मान बहुत ही बड़ा भारी बात है। जो कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ होता है जो कुछ कहने से आदमी, अब यदि हम खुल करके कह देना तो बहुत से आदमी शत्रु भी हो जाएंगे। इसलिए आदमी भगवान इसीलिए सामने नहीं आते हैं, गुरु भी नहीं कहते हैं, प्रकरण रूप से इधर से उधर करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ लेते हैं और अबुद्धिमान विरोधी बन करके धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। आशा बंध भगवान का भजन कर रहा है, प्रेम अभी नहीं हो रहा है, प्रेम के निकट पहुंच गए हैं तो आशा नहीं छोड़ता, कृष्ण जरूर मिलेंगे ही। सब समय ऐसी ऐसा उनकी आशा बनी जरूर मिलेंगे, कभी भी निराश नहीं होता। दो जन्म लग गए, चार जन्म लग गए, दस जन्म लग गए, निराश नहीं, मिलेंगे जरूर और दीर्घता के साथ में खड़ी करता। जैसे नारद जी को भगवान ने दर्शन दे करके फिर अंत में कहा इस शरीर से तुमको दर्शन नहीं मिलेगा, रोना कल्पना सब छोड़ छाड़ करके जैसे भगवान ने आदेश दिया पृथ्वी में सर्वत्र प्रजा प्रचार करो, मान इत्यादि की लालसा छोड़ दो। लोग क्या कहते हैं ये पागल है कि कैसा है, कोई लज्जा नहीं है, तो लज्जा कट जा सब कुछ छोड़ करके संसार में प्रजन करते हैं हमारे नाम वो वैसे ही कर्म है। बहुत दिन बीत गया आशा उन्होंने नहीं छोड़ी तो क्या हुआ, शुद्ध स्वरूप की उनकी प्राप्ति हुई। ऐसे ही हमारे नरोत्तम ठाकुर जी के गुरु
लोकनाथ
साधारण साधक के गुरु जी प्रसन्न नहीं हुए, हमको गुरु शिष्य के रूप में अंगीकार नहीं हुआ, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। दूसरा होता ना तो ऐसे ऐसे लाख गुरु मिलेंगे चलो उस गुरु की, किंतु उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, मर जाएंगे मिट जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी आशा जरूर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये कब तक हमको गुरु मिलेगी शिष्य नहीं आएंगे। जब ऐसी अवस्था ही पैसा नाटक की सब फेंक दे है, उन पर बिगड़े भी किंतु वो नहीं अपने पक्ष से नहीं तो उन पर करके उनको शिष्य रूप में सबरी के पास में कितने दिन भगवान नहीं आए, आशा छोड़ी नहीं छोड़ी। इसी तरह से महाप्रभु के समय में एक महाप्रभु जी ने कहा तुम पर हम लाखों जन्म तक कृपा नहीं करेंगे, इस मुकुंद को काल खड़े दिया नहीं करेंगे, अब वो हम रहते ना तो कहते या लाक्ष्य हम नहीं कृपा करेंगे। अच्छा और जो अभी हम दिखाते क्या देखा है गा? अच्छा तो आपको मालूम पीछे पड़ेगा दिखाएंगे नहीं, आशा नहीं छोड़े कभी कदापि आशा मत छोड़ क्या लाख जन्म में होगा बस ना जो लाख जन्म के बाद होगा बस आनंद से जब नाच लेगा माफ नहीं गया अरे बुला बस गले से लग करके बस साथ ही साथ बस प्रेम में अभी हो करते एक सेकेंड में ऐसे ही आशा नहीं इसको कहते हैं आशा बंध समुत्कंठा। कभी वैष्णव हो यदि उपेक्षा भी करें भाई तुम लोग मत झगड़ाओ, उपेक्षा तुम्हारे कल्याण के लिए चाहिए। हम लोग कभी कभी गुरु जी कभी उपेक्षा की आशा मंग नहीं छोड़े। इस तरह से शास्त्र में बहुत से उदाहरण मिलते हैं, एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म लेंगे किंतु हम आशा में जरूर मिलेंगे। समुत्कंठ मिलेंगे तो बस चुपचाप सोए रहे सोते रहे ऐसा नहीं, समुत्कंठ कब मिलेंगे कब मिलेंगे ऐसी भावना रहे। जब मिलेंगे ही तब तक फड़ाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं मिलेंगे इसकी जल्दी कब मिलेंगे ऐसी हृदय में तड़पण। समुत्कंठ का कोई उदाहरण है इस शास्त्र में? जो समुत्कंठ रहा नहीं जाते रघुनाथ दास को स्वामी इत्यादि आशा हरे अमृत सिंधु मई कथंचित कालो मया न गमिता केशम प्रथम ही तंचे कृपा मई विधास प्राण ब्रजेन बरूर बर। आशा का समुद्र लहरा रहा है, क्या आशा का समुद्र है? राधा जी कृपा कैसे कृपा कर अपने चरण हमारे सिर पर देते कैसी है ये बोलेंगे बिलास कर जरा पंखा लाना तो कभी रूप मंजरी बुलाएंगी जिस पैर को मैं पलट रही हूं तुम इसको ले लो कभी किसी रूप में। ऐसे आशा का सागर है, मैं उस आशा के सागर को पाने के लिए उत्तम का ऐसा ही प्रतीक्षा कर आशा बंदेश नहीं आशा भरे अमृत कथन के कालो मयान गमिता काल कब कहां चला गया इसको मुझे मालूम ही नहीं, ये ऐसा भाव। और जितना भी काल चलाएगा ऐसी उत्कंठा बनी रहे भजन में, इसको कहते हैं प्राण यहां तक आ गए मरने मरने। गोपियां कृष्ण के मथुरा जाने मथुरा लड़का जाने प्राण यहां तक आ गए, अब मरने मरने को हुए अब मर ही गई कितना मर जाती जाए तो यदि वो कहा है कि आएंगे हम वो जरूर आएगा आएगा जरूर, और यदि हम मर जाएंगे तो उसको न दे करके उन्हें दे जाएंगे इसलिए मर आशा जरूर आएगा। इस साधक को भी जो भाव अवस्था में पहुंच गया ऐसे ही आशा बन गया और समुत्कंठा बनी गई कि आज कल मिलेंगे जरूर और उत्कंठा कब मिलेंगे कब मिलेंगे। उद्धव जी को भी भ्रम हो गया गोपियों का भाव देखकर, कभी तो कह रही है उनके बिना हम मरी मरी और फिर कहते हैं ये कृष्ण से कहें जल्दी आ जाए जाए मक्खन समझ ही नहीं सकते इनकी ये भ्रांति है या यथार्थ स्थिति है कुछ भी समझ नहीं सकते। साधारण प्रेम की ब्रज प्रेम को नहीं समझ सकते तो मादन मोदन की अवस्थाओं को उद्धव जी क्या समझेंगे। इसलिए नाम गान में सदा रुचि, नाम गान में सदा सब समय रुचि बनी रुचि रुचि के साथ नाम रुचि दूसरों को दिखलाने के लिए, जहां पर अधिक आदमी नहीं है वहां पर कीर्तन नहीं होता अच्छा, और जहां आदमी अधिक रहते हैं कीर्तन माने ये मत समझ लो जो कीर्तन करते हैं केवल ढोलकी और तबला अथवा मृदंग सुखदेव को कीर्तन में रखा गया है, इस चीज को समझो। गैया सखी कीर्तन, कीर्तन ही मैंने क्या, इसमें जितना चित्त आविष्ट हो जाता है और सौन में जितना चित्त आविष्ट होता है और दूसरे चित्तों में चित्त आविष्ट नहीं होगा, इसलिए व्यास की कीर्तन है अपरिचित समय स्मरण वाला गड़बड़ हो जाएगा कुछ, किंतु ये दोनों बड़े एकदम प्रगाढ़ उसमें चित्त लग जाएगा, इसलिए नाम गाने सदा रुचि, नाम गान नाम की महिमा ही नाम है, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, दुखेले कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं, दूसरों के साथ से सम्मिलित होकर के कर रहे हैं, जहां पर कि विशेष विशेष अन्य अन्य भावों से युक्त विषयों से युक्त जिनका चित्त है ऐसे ऐसे सब लोगों के साथ में कोई कर रहे हैं और वहां पर अनुगत्य न रहे तो वो कीर्तन संकीर्तन नहीं। एक बार गुरु जी कह रहे थे पूछा हमने परिक्रमा हो गई तो पूछ दिया ये परिक्रमा कौन कर रहा है, लोगों ने कहा जैसे सभी लोग कर रहे हैं परिक्रमा, जितने यहाँ पर 10,000 आदमी है कि 15,000 ये परिक्रमा कर, नहीं ये लोग एक भी नहीं परिक्रमा कर रहे, कौन कर रहा है, गुरुदेव जी परिक्रमा कर रहे हैं, जो उनके अनुगत्य में उनका पता श्रवण करके मन को भी अपने चित्त को उनमें लगा करके परिक्रमा करेगा उनका तो परिक्रमा हो जाएगा, और जो उनका अपने मन में उनका मन में मन मिलाया नहीं और परिक्रमा कर रहा है उसको छंद गति से इधर उधर देखता है इधर